मेरे नौजवान साथियों नमस्कार। दोस्तों, मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे हरित हाइड्रोजन नीति के बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन इससे पहले जो दो थोड़ी सी महत्वपूर्ण खबरें हैं वे मैं आपको बताना चाहूंगा। यूक्रेन की समस्या पर आपकी निगाह होगी और जो मूल समस्या है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं। आप देख रहे हैं कि समस्या लगातार बढ़ती ही चली जा रही है, यहां तक कि भारत ने विदेशों में रह रहे भारतीयों से, खासकर वहां बहुत से हमारे स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, उनको अंततः यही सलाह दी कि जितनी जल्दी हो सके आप यूक्रेन छोड़ दीजिए, और एयर इंडिया बकायदे उसके लिए फ्लाइट भी चला रही है, यहां तक की खबरें आपके पास हैं। आप यह भी देख रहे हैं कि लगातार जो यूरोप के देश हैं, स्पेशली जर्मनी और फ्रांस, इस कोशिश में हैं कि किसी तरह से यह जो तनाव है खत्म हो जाए, युद्ध की स्थिति से हम बच सकें। ऐसा क्यों, इसके बारे में मैंने आप लोगों को कल बताया था। ध्यान दीजिए कि किस तरीके से जर्मनी और फ्रांस जैसे जो यूरोप के देश हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था यूरोप की सबसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से है, उनके यहां जो गैस की सप्लाई करने वाला देश है वो रशिया ही है, और अगर यह युद्ध हुआ तो डेफिनेटली उनके यहां गैस की सप्लाई बाधित होगी। इसका बहुत ही एडवर्स इम्पैक्ट उनकी इकोनॉमी पर पड़ेगा, इसलिए लगातार ये इस कोशिश में है कि किसी तरह से यह युद्ध रुक जाए। ब्रिटेन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है, अमेरिका एक तरह से ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर ही हो चुका है, तो इसीलिए आप देखिए कि ज्यादा बढ़ चढ़ करके जो वक्तव्य दिया जा रहा है वो अमेरिका के द्वारा ही दिया जा रहा है कि इस डेट को जो रूस है वो यूक्रेन पर अटैक कर देगा, इस तरह की बातें आप सुन रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लगातार इस पर निगाह रखें, और कल मैंने स्पेशली आपको बताया था, खासकर मेंस एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए, कि भारत को इससे क्या सबक लेना चाहिए कि हम 9.5 लाख करोड़ रुपए का जो तेल और गैस है वो आयातित करते हैं, और जो आयात जिन देशों से हम कर रहे हैं, अगर वहां कोई संकट पैदा हो जाए या किसी वजह से हमारे रिश्ते खराब हो जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था कितनी बुरी तरह से दुष्प्रभावित होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। और बहुत अच्छी बात है कि भारत लगातार इस दिशा में, खासकर जिसे हम रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, काम कर रहा है, और उसने अपने टारगेट फिक्स कर लिए हैं, और उसी टारगेट के तहत सरकार ने पिछले सप्ताह हरित हाइड्रोजन नीति की घोषणा की है, जिसकी चर्चा हम लोग आज मुख्य विषय में करेंगे। अब आप देखिए कि रूस क्या कर रहा है। रूस पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि यह तो उसके लिए अस्तित्व का संकट जैसा बन गया है, क्योंकि यूक्रेन अगर नाटो में शामिल हो गया तो मैं आपको बता चुका हूं कि फिर तो जो नाटो की सेना है वो बिल्कुल रशिया के नाक के नीचे आकर के बैठ जाएगी, और वहां से 5 मिनट में मास्को को मिसाइल से खत्म किया जा सकता है। कोई भी देश सामान्य तौर पर ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। तो अब रूस ने जो कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसका खासकर यूरोप के देशों ने और अमेरिका ने बहुत जबरदस्त विरोध भी किया है, वह यह है कि यूक्रेन के 2 इलाकों को उसने स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। देश यूक्रेनी अभी वे जो क्षेत्र हैं वो यूक्रेन के अंतर्गत हैं, वो यूक्रेन के हिस्से हैं, लेकिन यूक्रेन का जो पूर्वी भाग है, मैं आपको बता चुका हूं, आप देखिए नक्शे पे जाकर के, तो जो यूक्रेन का पूर्वी भाग है वो रशिया से सटा हुआ है, और ये जो पूर्वी भाग है खासकर यह एक प्रकार से रूस के प्रभाव में ही है। यहां रूसी भाषा बोलने वाले ज्यादातर लोग हैं, और ये सही मायने में यूक्रेन के, आप यूं कह लीजिए कि विद्रोही भी हैं, ये आप कहीं ना कहीं ये मानकर चल सकते हैं कि ये रूस के समर्थक हैं। तो रूस ने इसका फायदा उठाते हुए इन्हें स्वतंत्र घोषित कर दिया है। तो ये जो दोनों इलाके हैं, जो दोनों क्षेत्र हैं, ये नाम आपको याद रहने चाहिए, उनमें से एक का नाम है डोनेस्क और दूसरे का नाम है लुहांस्क। डोनेक्स और लुहांस, इन दोनों को रशिया ने स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी। चलिए, रूस ने दिया है कोई बात नहीं, अभी दुनिया को देना है, दुनिया क्या कदम उठाएगी हम नहीं जानते, लेकिन एक और भी बड़ा कदम रूस ने उठाया है कि इन दोनों देशों के साथ उसने सुरक्षा संबंधी समझौता भी किया है। रक्षा समझौते का मतलब होता है कि यदि कोई भी देश इन दोनों पर आक्रमण करेगा तो वह रशिया पर आक्रमण माना जाएगा, और ऐसी स्थिति में रशिया का यह कर्तव्य बनेगा कि वह इन देशों की रक्षा करे। तो सीधी सी बात है कि वह इनके बिहाफ पर युद्ध करेगा, इनकी रक्षा करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, अब क्या स्थिति हो गई, अब आप देखिए कि यूक्रेन में ही संकट पैदा हो गया, कि यूक्रेन के लोगों का विरोध ये बकायदे कर रहे हैं, ये जो दोनों देश अभी घोषित किए गए हैं। यहां के जो विद्रोही हैं पिछले 8 साल से, आप ये कह लीजिए कि विद्रोहियों का कब्जा है, और ये जो विद्रोही हैं ये रशिया समर्थित हैं, ये रशिया का समर्थन करते हैं, और यूक्रेन की सेना के साथ इनकी झड़प चलती रहती है। तो ये जो है ये रशिया के साथ मिल गए हैं, या स्वतंत्र राष्ट्र का इनको दर्जा मिल गया है, रशिया ने भले दिया हो, तो अब इनको तो ये लग रहा है ना, इनके एम्बिशन सोचिए, महत्वाकांक्षाएं इनकी बढ़ गई कि अरे हम तो स्वतंत्र देश बन सकते हैं, तो हम क्यों यूक्रेन का समर्थन करें, और स्वतंत्र देश बनाने का काम कौन कर रहा है? रशिया कर रहा है, तो रशिया का समर्थन करेंगे। इसे ही हमने अपने इतिहास के दौर में, खासकर फ्रीडम मूवमेंट के दौर को, फूट डालो और राज्य करो की नीति कहा, जो अंग्रेज किया करते थे, उसी की झलक आपको यहां दिखाई दे रही होगी। खैर दोस्तों, आगे हम लोग इस पर बात करते रहेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसके डेवलपमेंट पर आपकी नजर बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है जो आज के दैनिक भास्कर के एडिटोरियल कमेंट से पता चलता है, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सरकार जैसे कोई घोषणा करती है और घोषणा करने के खिलाफ आंदोलन होते हैं, और उस आंदोलन में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो सरकार बकायदे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए उनसे वसूली कर सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, खासकर जब नागरिक संशोधन अधिनियम के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, तो उस समय ऐसी संपत्ति, सरकारी संपत्ति नष्ट की गई, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह आदेश दिया कि जिन्होंने संपत्ति नष्ट की है उनसे मुआवजा वसूला जाए, ठीक, और उसने मुआवजा वसूल करना शुरू कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन मुआवजा वसूल करने की जो जिम्मेदारी है वो एसडीएम को दे दी गई, और वही सब कुछ कर रहे हैं, यानी कि कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है इसका फैसला कर रहे हैं, किसने यह संपत्ति नष्ट की है उसका फैसला कर रहे हैं, उनको नोटिस दिया जा रहा है और फिर धन वसूल किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की कि क्या कोई सरकार खुद ही शिकायतकर्ता हो सकती है और फैसला करने वाली भी हो सकती है? देखिए, संपत्ति किसकी नष्ट हुई? सरकार की, तो सरकार शिकायत करने वाली हो गई, और फैसला भी वो खुद कर रही है कि हाँ हमारी इतनी संपत्ति नष्ट हुई है और हम इसको ऐसे वसूल करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये गलत है, जिनसे भी इस तरह की वसूली की गई है उसे वापस किया जाए, और आगे के लिए डेफिनेटली यह दूसरे राज्यों के लिए भी एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन का काम करेगा, या कह लीजिए कि कानून का काम करेगा, और इसे पहले भी सन 2009 और 2018 में इस तरह के आदेश दिए गए हैं। ये एडिटोरियल कमेंट आज आपको प्रोवाइड मैं कर रहा हूं, इसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और एक महत्वपूर्ण डिसीजन है। खासकर मैं ये बताना भी चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के जो डिसीजंस आते हैं उन पर लगातार आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो डिसीजन है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा भी है कि ये जो उत्तर प्रदेश सरकार जो कर रही है, ये बेसिकली हमारे यहां खासकर शक्ति संतुलन का जो मूलभूत सिद्धांत है हमारे संविधान का, उसके खिलाफ है। मूलभूत सिद्धांत क्या है? एक कानून बनाने वाली एजेंसी विधायिका, वो स्वतंत्र होगी, इस कानून को लागू करने वाली एजेंसी कार्यपालिका है वह स्वतंत्र होगी, और तीसरी जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र होगी। इसे शक्ति संतुलन का सिद्धांत कहा जाता है, ताकि कोई अपने मन की न कर सके, मनमानी न कर सके। तो यहां आप देख रहे हैं कि सरकार ही सब कुछ कर रही है, तो वह शक्ति संतुलन के सिद्धांत का उल्लंघन कर रही है। हो सकता है कि मेंस में इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाए शक्ति संतुलन के सिद्धांत के बारे में, तब एक अच्छी तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए जरूरी हो जाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का उसमें हवाला दे। तो इसलिए दोस्तों, जब भी सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के डिसीजंस आते हैं, आपको चाहिए कि आप अलग से उन्हें नोट कर लें। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। गुरुवार को सरकार ने जो हरित हाइड्रोजन नीति है वह जारी की है दोस्तों, इसका भी फर्स्ट पार्ट आया है अभी, और इसमें आगे आनी है। खासकर इस नीति का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए दो पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर कोई भी एजेंसी, कोई भी कंपनी हरित हाइड्रोजन तैयार करना चाहती है, या जो ऊर्जा के नवीनीकरण जो स्रोत हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड्स एनर्जी है, इन सब के जरिए अगर वह विद्युत पैदा करना चाहती है, तो उसे इसकी पूरी आजादी होगी, वह ऐसा कर सकती है, उसको बहुत ज्यादा अब चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं होगी, पहली बात, यानी कि अब कोई भी ऐसा कर सकता है। देखिए, अगर आपने महसूस किया हो, अगर बीच बीच में अखबारों में आता भी है कि आप अपने घरों में सोलर प्लांट लगा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ बकायदे सोलर प्लांट लगा हुआ है, हमारे घर की पूरी जो बिजली है वह सोलर प्लांट से बनती है, सोलर ऊर्जा से बनती है। तो आप बिजली उत्पादन तो कर ही रहे हैं, और जो हमारी जरूरत से अधिक की बिजली होती है वो बकायदे ट्रांसमिशन के जो ग्रिड में चली जाती है। तो ये है। दूसरा ये है कि जो उत्पादक होंगे वो जब अपने बिजली उत्पादन को दूसरे राज्यों में भेजेंगे तो जो अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन जो शुल्क होता है, दूसरे राज्यों को बेच रहे हैं ना, उसमें छूट मिलेगी। और तीसरा ये है कि जब आप इस तरीके से कनेक्टिविटी चाहेंगे, मान लीजिए कि मैं किसी एक राज्य में एक स्थान पर बिजली पैदा कर रहा हूं, तो जरूरी है कि उसे मैं ट्रांसमिट करूं दूसरे राज्यों तक जाए, तो कनेक्टिविटी के लिए जो भी चीजें होंगी उसमें प्राथमिकता मिलेगी, क्योंकि अदरवाइज मैं अगर उसे भेज नहीं सकता कहीं तो मैं उसे बचा करके कैसे रखूंगा, वो चीज खत्म हो जाएगी। तो अभी तीन पॉइंट इस नीति के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला है उत्पादन करने के लिए अब आपको काफी आजादी है। दूसरा है कि अगर आप अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उसमें आपको शुल्क में छूट मिलेगी। और तीसरा यह है कि ग्रिड से कनेक्टिविटी तक के लिए आपको प्राथमिकता दी जाएगी, सबसे पहले यह काम किया जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने सोचा था कि मैं आपको हाइड्रोजन के बारे में भी, हाइड्रोजन से कैसे आप रिन्यूएबल एनर्जी तैयार करेंगे और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इस पर भी कुछ चर्चा करूं, लेकिन अभी वक्त नहीं है। यदि संभव हो सका तो कल हम लोग इस पर थोड़ी सी बातें करेंगे, और यदि ऐसा संभव नहीं हो सका तो मैं चाहूंगा कि आप अपने लेवल पर इसकी थोड़ी सी तैयारी कर लें। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: अजय वासुनिया, रवि कुमार दयालपुर बिहार से, अनंत चौहान और सौम्य रंजन मिश्रा। आप सबका बहुत बहुत आभार। और फ्रेंसिसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।